엄마
하래 하래 아버라 아사고린다 아 인다 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 사빈다 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, ek, ke toro, यो कृष्ण सो एक थोड़ा सा हाथ जोड़ के एक मिनट का ध्यान करेंगे हम बोलेंगे आप पीछे दोहराएंगे इसको मंत्र मेडिटेशन कहते हैं गौरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण। वागवनानी परिवार सुधा और राजकुमार के निवास स्थान पे आप सब देवियां हरि कथा के लिए पधारी हैं, आपका हार्दिक स्वागत है और इस वागनाणी परिवार का धन्यवाद करते हैं। अपने निवास स्थान के दरवाजे आप सबके लिए और हमारे लिए खोले हैं कि हम बैठकर आत्मा के आनंद का अनुभव कर सकें। सो एक मिनट अभी जो हमने ध्यान किया, मंत्र मेडिटेशन, मंत्र शब्द का अर्थ है मन को। त्रायते, त्रायते का मतलब जो संसार में दुख ताप संताप कष्ट है उनसे थोड़ी जब तक मंत्र मेडिटेशन करते हैं तब तक उससे हमको तार देता है, शांत कर देता है। हमने दुनिया भर में जो लोग भारतीय मूल के नहीं हैं, अफ्रीका और रशिया जिनको भाषा तक नहीं आती है, मंत्र उच्चारण करने के बाद सबसे पूछा तो प्रायः उन सब का एक ही उत्तर आता है कि जब ये जप कर रहे हैं तो हमको शांति का अनुभव होता है, अंदर हैप्पीनेस, हल्कापन। और इस प्रकार से सबका प्रायः एक ही उत्तर आता है कि खुशी का अनुभव होता है, शांति और हैप्पीनेस मिलती है। आपको ऐसे लगा क्या? आपको ऐसा महसूस हुआ? यू फेल्ट लाइक दैट? जब ऐसे शांति, हल्कापन, पीसफुल। और हर एक आदमी फिर अपना अपना जैसा उसका स्तर होता है ऐसा उसका अनुभव बढ़ता जाता है। तो फिर हम जनरली पूछते हैं सबसे के जैसे पूछें, आप सब लोग भारत मूल के हैं, यहां बहरेन में आए हैं तो कोई उद्देश्य होगा ना आने का? भाई मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो भाई आए हैं कमाने के लिए, सीधा सा ये उत्तर है। तो कमा के क्या करेंगे? पैसा आ जाएगा फिर क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, यही है क्या कोई और उद्देश्य है? जीवन में जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम सुखी हो जाएं। हमको कोई चाहने वाला हो, हम किसी को चाहें, ऐसा सुख का वातावरण हो, ये सबके अंदर की अभिलाषा है। जस्ट डीपली अपने अंदर जाके देखेंगे तो ऐसे लगेगा। फिर ये प्रश्न दूसरा हम पूछते हैं, क्या ये सब कुछ पाने के बाद जो चीज आप ढूंढ रहे थे वो मिल गई क्या? जो सुख शांति प्रेम ढूंढ रहे थे, जिसके लिए सब कुछ घर छोड़ा है, कभी परिवार छोड़ा है, तो क्या वो मिल गया क्या? ये जब सबसे पूछते हैं तो कहते हैं हाँ थोड़ी देरों के लिए, थोड़ी देर के लिए मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सदा रहने वाला मिल गया हो। और लेकिन हमको कौन सा चाहिए, एक प्रश्न कभी हम पूछते हैं सामान्य सबसे, भाई सबको सुख चाहिए? कहते हैं हाँ सुख चाहिए। भाई कौन सा सुख चाहिए? आपके सुख का, आपके सुख की परिभाषा क्या है? व्हाट टाइप ऑफ हैप्पीनेस यू वांट? कौन सी हैप्पीनेस? मंडे वाली चाहिए, संडे वाली चाहिए? तो आपका क्या उत्तर होता है? एवरीडे वो हैप्पीनेस चाहिए जो सदा रहने वाली हो, राइट? फिर पूछा जाता है कहां है आप, कहां खुश रहना चाहते हैं, घर पे के दुकान पे या बाजार में या काम पे, कहां? तो सबका क्या जवाब आएगा? सब जगह, सब समय खुशी चाहिए, सब जगह खुशी चाहिए। अब किससे खुशी चाहिए? अपने परिवार से चाहिए, मित्रों से चाहिए, ग्राहकों से चाहिए, किससे चाहिए? तो जवाब क्या आएगा? सबसे। अब ये तीन हमारी जो खुशी की रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, जो हमारी चाहना है, वो है कि हम सुखी रहें, सदा सुखी रहें, सब जगह सुखी रहें, सब समय सुखी रहें, सबके साथ सुखी रहें। अब ऐसा कौन है जो सब जगह है, सब में है, सबके साथ है, और सब में, सब जगह, सब समय, ऐसा कौन है? कोई अपना रिश्तेदार है क्या? अपना कोई सगा संबंधी है क्या? और कोई बैंक का पड़ा हुआ बैलेंस आपके साथ सदा है, ना आपकी गाड़ी है ना मोटर है ना घर है, ये सत्य है कि झूठ है? तो कौन है जो सब जगह है सब समय है? साइंस ऑफ सोल, ये दुख से कहना पड़ता है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये साइंस ऑफ सोल नहीं पढ़ाई जा रही है। और साइंस ऑफ सोल आत्मा के विज्ञान के आधार के ऊपर एक ही धर्म है दुनिया में, और धर्म शब्द का अर्थ है जिसके आधार के ऊपर कोई चीज टिकी हुई हो। मजहब अर्थ नहीं है धर्म का, जो संस्कृत का आकर शब्द धर्म है उसका अर्थ रिलीजन नहीं है। रिलीजन फेथ को कहते हैं, फेथ तो बदलते रहते हैं, लोग कभी एक फेथ है कभी दूसरा है, लेकिन धर्म बदलता नहीं है। धर्म का मतलब धीर धातु है, धीर जहां से धर्म निकला है रूट, उसका मतलब आधार। ऐसी कौन सी चीज है जो किसी से कभी अलग नहीं की जा सकती? किसी भी जिंदा जीव से जो चीज नहीं अलग की जा सकती है उसको धर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, पानी का धर्म है प्यास बुझाना, बहना। अगर प्यास नहीं बुझाए बहे नहीं तो उसको पानी नहीं कहेगा, ये पानी का धर्म है। पानी कहीं भी होगा तो बहेगा और पीने से प्यास बुझाएगा। कोई भी लिक्विड बहेगी तो तेल भी बहेगा लेकिन प्यास नहीं बुझाएगा तो उसको पानी नहीं कहेंगे। ऐसे चीनी का धर्म है मीठा होना। हर एक सफेद चीज चीनी नहीं है, जो मीठा है वही चीनी है, तो ये उसका धर्म, उससे अलग नहीं किया जा सकता। आग का धर्म है रोशनी देना, आग का धर्म है गर्मी देना, अगर गर्मी और रोशनी नहीं है तो उसको आग नहीं कहेंगे। तो ऐसे हमारा पहले तो हमारी पहचान क्या है, ये पहला प्रश्न है। ये जो खुशी आप सब कह रहे हैं कि सदा चाहिए, सब जगह चाहिए, सब में चाहिए, ये किसकी, ये इच्छा किसकी है? हमारी है तो हम कौन, ये दूसरा एक बहुत बड़ा भारी प्रश्न है, हम कौन है? इस प्रश्न के ऊपर अच्छी तरह से चिंतन करेंगे, बच्चे से भी पूछेंगे कि भाई आंख देखते कैसे हैं, बोले आंख से। किसकी आंख है? मेरी आंख है तो मैं आंख तो नहीं हूं ना। सुनते कैसे हैं? कान से। किसका कान है? मेरा कान है। तो मैं कौन हूं? कान मेरा, आंख मेरा, सर मेरा, मुख मेरा, ये सब काम मैं करता हूं, ये मैं कौन? तो मैं तो इस शरीर से अलग हुआ ना, ये शरीर तो मेरा है, तो मैं कौन? जैसे ये घर है भाई, ये घर तो ये राजकुमार जी का है, तो राजकुमार जी और घर में तो अंतर है ना। ये मेरी कार है, तो मैं और मेरे कार में तो अंतर है ना। तो कार को तो रोज भाई का तेल भी डालना है, कार की सफाई करनी है, लेकिन कार का मालिक है उसको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये पहला प्रश्न आध्यात्मिकता का है कि हम केवल शरीर नहीं है जो दिखता है, इसके अंदर जो लिविंग फोर्स है जिसको जीवात्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, वो हमारी रियल आइडेंटिटी है। और प्रायः इस बात को न कोई सोचता है, न कोई समझता है, न कोई जानने का प्रयास करता है, लेकिन जो आप सुख चाह रहे हैं वो ये सोल की डिजायर है, ये बॉडी की डिजायर नहीं है, ये सोल की डिजायर है। बॉडी को तो भाई अभी थोड़ा नींद आ गया तो सुख मिल गया, भूख लगी रोटी मिल गई तो बॉडी को सुख मिल गया, लेकिन उससे सोल सेटिस्फाई नहीं होता है। जीवन में संतुष्टि जिसको कहते हैं, सेटिस्फेक्शन कहते हैं, वो बाहर से नहीं मिलती है, वो अंदर से होती। वो सोल, पहले तो पहले हमारा क्या कि सोल, ये सोल की डिजायर है, क्योंकि सोल सदा रहने वाला है, सोल आनंदमय है, वही ब्लिसफुल है, इसलिए हम सब ब्लिस चाह रहे हैं। ये आत्मा की जिज्ञासा है, ये शरीर की नहीं है, और ये शरीर से पूरी हो ही नहीं सकती। शरीर तो मशीन है, गाड़ी है, जो असल में मालिक को मंजिल पे पहुंचाने के लिए है। तो शरीर को यंत्र कहा है शास्त्र ने। तो धर्म की परिभाषा कह रहे थे, धर्म क्या है फिर जो हमसे अलग नहीं किया जाता है? वो अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो है प्रेम, लव, प्रेम। ये असल में जीव का धर्म है। चाहे मानव हो, चाहे पक्षु हो, पशु हो, गाय अपने बछड़े को जन्म देके चाटती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पिलाती है कि नहीं है? चिड़िया अपने बच्चे के लिए कहीं से दाना लाती है और उसको मुंह में अब चबा के खिलाती है, खिलाती है कि नहीं खिलाती। पशु पक्षी भी अपने अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, करते हैं कि नहीं करते। तो अब धर्म हमारे की पहचान हुई, धर्म वो है, असल में हमारा जो धर्म है वो है प्रेम करना। लेकिन हम किसी से प्रेम करते हैं ये दिखाएंगे कैसे? मां बच्चे से प्रेम करती है तो कैसे उसको दिखाएगी? प्रेम को दिखाने का साधन क्या है संसार में? सेवा, सर्विस। जिससे प्रेम करेंगे उसकी सेवा करते, ये आप देख लीजिए। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो सेवा और प्रेम नहीं करता। किसी न किसी का प्रेम और किसी न किसी की सेवा करने का हमारा सबको करना पड़ता है। आप देख लीजिए जाके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं कि नहीं, किसी की सेवा तो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है तो अपने शरीर की तो सेवा करनी है, अपने से तो सभी प्रेम करते ही है, अपने परिवार से करते हैं। किसी के घर में परिवार नहीं है तो कुत्ता भी पालते हैं, उसको बैठ के प्रेम करते रहते हैं। लेकिन प्रेम से खाली कोई रह नहीं सकता है। ये बात सत्य है कि नहीं है? तो प्रेम और सेवा ये असल में एक ही धर्म है दुनिया का। सारे मजहबों में अल्टीमेटली कहते हैं आपको खुश रहना है। कोई कहता है स्वर्ग में जाके खुशी मिलेगी, कोई कहता है सचखंड जाके खुशी मिलेगी, कोई कहता है भगवत धाम जाके खुशी मिलेगी, कोई कहता है वैकुंठ जाके खुशी मिलेगी। वो कहते हैं यहां तो है नहीं, सबने देख लिया, वो और जगह का नाम बता रहा है। यहां तो कोई नहीं कहता है खुशी मिलेगी, यहां तो कहता है एडजस्ट करके काम चलाना है। जनरली आप देखेंगे तो ऐसे ही कहेगा, भाई यहां सुख नहीं है। दुनिया बनाने वाले ने इसके ऊपर एक स्टैम्प लगा दी है। भगवत गीता में एक शब्द लिखा है दुखालियम अशाश्वतम, दुखालय आलय कहते हैं, जैसे विद्या यहां पढ़ाते हैं उसको विद्यालय कहते हैं, जहां दवाई होती है उसको औषधालय कहते हैं, और जहां दुख होता है उसको दुखालय कहते हैं। ये संसार में तो दुख ही है, ये संसार वैसे ही दुखमय है। आपके पास कुछ भी हो, कल मैं परसों कहीं एक मैसेज आया था, किसी को बता रहा था, देखा था मैंने, किसी स्त्री के पास भगवान की कृपा से बे इंतहा धन था और बैग भर के, और उसको बीमारी टर्मिनल कैंसर था, अंतिम वो बैग भर के गई, डॉक्टर ये सब पैसा ले लो मेरे को ठीक करो। अब डॉक्टर कहता है अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले सब कुछ ले लो। वो तो ठीक है देवी, मैं सब कुछ तो ले लो, लेकिन मैं ठीक नहीं कर सकता, क्या करूं? अभी तो आपकी बीमारी ऐसी है इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। तो गुस्से में ऐसे बैग को नीचे फेंकता है, पैसा उड़ता है, कहता दुनिया देखो ये पैसा सारी उम्र इकट्ठा किया, अब मैं इससे मेरी सेहत खरीद नहीं सकती, मेरी स्वास्थ्य खरीद नहीं सकती, ठीक तो हो नहीं सकती, काम किस आएगा ये? उसका वो लिविंग एग्जाम्पल दिखाया है फोटो में, मतलब ये रियल थिंग है जो दिखाई गई है। तो ये वो तो नहीं खरीद सकता हूं मैं इससे। तो प्रेम कौन हमसे करता है अगर देखा जाए तो? जो प्रेम करता है उसको कहते हैं सुहृद। शब्द जो प्रेम के लिए है वो है सुहृद। सुहृद हृदय का मतलब दिल, जो हमारी दिल में है, जो हमारी दिल को जानता है वो हमसे प्रेम करता है। और जो प्रेम करता है, हम जिस किसी से प्रेम करते हैं उसकी सेवा करना हमारे लिए अनिवार्य है, और उस सेवा में हमको कुछ चाहिए नहीं। एक बच्चा था, आजकल के स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, बाहर रहता था, अपने घर में आया तो मां ने कह दिया बेटा थोड़ा हाथ बटा दे काम करने में, ये लान बड़ा हो गया इसको काट ले। बेटे ने लान काट लिया। बोला कुछ कपड़े पड़ने हैं, आयरन कर ले। कर लिया, बाजार से कुछ सामान ले आया, लेके आ गया। दोपहर को भोजन के समय बेटे ने जो पढ़ाई की थी उसके अनुसार एक चिट्ठी लिखी कि लान काटने के 50 रुपये, इस्त्री करने के 25 रुपये, बाजार जाके आने के 70 रुपये, वो मिला के 120 रुपये कितना ये बिल रख दिया टेबल पे। क्योंकि आजकल की पढ़ाई यही है कि उसमें कमाओगे क्या। तो मां ने बिल देखा भोजन खाने के बाद, मां के मन में बोली कुछ नहीं। रात को भोजन के ऊपर जब बच्चा बैठा तो एक बड़ा और कागज रखा हुआ था, बेटा तुम्हारे पैदा होने से तेरे को साफ किया, धोया, नहलाया, खिलाया, पिलाया, बिस्तर बनाया, कपड़े लेके दिए, पढ़ाया, ये सब सेवा की क्यों? और कीमत, मैं तुमसे प्रेम करती हूं इसलिए, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, मैं तेरा सब देखभाल कर रही हूं क्यों? मैं तुमसे प्रेम करती हूं। बिल में कुछ नहीं था, सिर्फ प्रेम लिखा था। तो बेटे ने जब भोजन के समय वो देखा तो उसको लगा कितना मैं मूर्ख हूं, सारी उम्र इसने इतनी सेवा की है, कुछ नहीं मांगा, आज एक दिन मैंने सेवा किया तो मैं उसका कैलकुलेट करके पैसा पूछ रहा हूं। तो सेवा जो माता पिता की है वो प्रेम के कारण है, वो प्रेम के कारण सेवा करते हैं अपने दुख को। और प्रेम की परिभाषा क्या है? जिससे प्रेम करते हैं उसका सुख देखना है, अपना सुख नहीं पता लगता है। बच्चे के सुख के लिए मां रात सजी सारी रात जाग सकती, इसको प्रेम की परिभाषा ये है। इससे मुझे क्या सुख मिलेगा, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम का परिवर्तित रूप है, विकृत रूप है, जो संसार में काम के नाम से जाना जाता है। काम का मतलब मुझे क्या काम निकालना है, सामान्य भाषा में इससे मुझे क्या मिलेगा, ये काम है, इसको कैसे मैं सुखी करूं, ये प्रेम है। और दोनों में अंतर कितना, जितना लोहे और सोने में है। तो असल धर्म प्रेम है। इसलिए जो श्लोक आज हमने भगवद गीता से आपके साथ चर्चा करने की बात की थी, भगवद गीता साइंस ऑफ सोल है और हमारी पहचान सोल है, तो हमारा विज्ञान क्या है ये हमको जानना चाहिए। शरीर के लिए तो हम सारा दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन आत्मा के चिंतन के लिए हमारे पास समय नहीं है और हमने उसको भुला दिया है। इसलिए सब कुछ सुविधाएं होने के बाद भी, सब फैसिलिटी होने के बाद भी कहीं कंटेनमेंट नहीं है, कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं प्रेम का वातावरण नहीं है। सब कुछ है लेकिन ये चीजें नहीं है। ये सत्य है कि झूठ है? फैसिलिटीज बहुत हैं, पहले नहीं थी लेकिन अब बहुत हैं, लेकिन कहीं भी कोई कहे कि मैं कंटेंट हूं नहीं, सेटिस्फाई हूं नहीं, इनर सेटिस्फेक्शन है नहीं, सक्सेस है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सेटिस्फेक्शन है कि आप संतुष्ट हो, सक्सेस है दूसरे देखते हैं कि ये सक्सेसफुल है, सक्सेस दूसरे डिसाइड करते हैं और संतुष्टि आप डिसाइड करते हो। तो आप क्या संतुष्ट हैं, कभी अंदर देखो। तो भगवद गीता का ये श्लोक, श्रुणो मे भूय परमम वचः, अर्जुन दोबारा मैं आपको मेरे परम वचन कहता हूं। दोबारा किसको हम बोलते हैं, बार बार किसको कहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं। जैसे बच्चा है, एक बात 100 बार समझाते हैं उसको, क्यों क्यों प्रेम उसको बार बार कहते हैं, तो भगवान कहते हैं इष्टोषी में दृढ़ मिति, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। इष्ट कहते हैं प्रिय को, इष्ट मित्र कहते हैं, मेरा ये बहुत प्रिय मित्र है। या जो कभी हम, कुछ लोग कहते हैं हमारा इष्ट देव भगवान रामचंद्र है, हमारा इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण है, हमारा इष्ट देव नरसिंह देव है, तो कुछ जो भगवान के जिस रूप से प्रेम करते हैं उसको इष्ट देव कहते हैं कि हमारा इष्ट है। तो इष्ट शब्द का अर्थ है जिससे प्रेम करते हैं, इष्ट मित्र। तो इष्ट भगवान कहते हैं मैं, तुम मेरे बहुत मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे को दोबारे बताने जा रहा हूं, रिपीट करके तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। काय के लिए बता रहे हो, तव हित कामया, तुम्हारे हित की कामना के लिए, तुम्हारा भला चाहता हूं। तो जो हमसे प्रेम करेगा वो हमारा भला चाहेगा, वो हमारा हित चाहेगा, अपना हित नहीं चाहेगा, हमारा हित चाहेगा। तो ये जो शब्द भगवान के हैं, ये शब्द घोषित कर रहे हैं कि भगवान हमसे प्रेम करता है, और कितना प्रेम करता है कि हमारे साथ, हमारे हृदय में जहां भी हम जाते हैं साथ जाता है। इसलिए हर जीव आत्मा हृदय में बैठी है, उसके साथ में परमात्मा उसका अज्ञात मित्र सुहृद जो सखा के रूप में बैठे हुए हैं। कहीं भी दुनिया में जाएं, हम किसी भी जूनी में जाएं, कल हम कहीं कह रहे थे क्लास में, किसी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं
वो भगवान अवतार लेके आए थे रामचंद्र, बहुत बड़ी लड़ाई की, इतना सारे लोग मारे, वो तो नरक में बैठा है। किसी ने कहा महात्मा को कि ऐसे लोग कहते हैं आप महाराज, कुछ बोलो उनको, ये तो भगवान के लिए उंगली उठा के कह रहे हैं नरक में बैठा है। तो महात्मा ने कहा क्यों भगवान, क्या नरक में नहीं होता क्या, क्या सब जगह नहीं है क्या? भाई भगवान सब जगह है तो नरक में क्यों नहीं होगा? और फिर उदाहरण देके हुए महात्मा समझा रहा है कि ये ठीक है, उस बेचारे की बुद्धि ऐसी है, कहने दो। बच्चा बीमार होता है तो मां उसको ले जाती है अस्पताल में ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मां बच्चे के पास बैठी होती है, बच्चे के सर के ऊपर हाथ, कोई बात नहीं बेटा तुम ठीक हो जाएगा। तो जब जीव अपने कर्मों के कारण यमराज के पास जाता है तो अस्पताल में पहुंचता है, यमराज उसकी ऑपरेशन करते हैं तो भगवान साथ जाता है, माता की तरह बैठा होता है पास में, कहता है बेटा ठीक हो जाएगा, यहां से तो वापस आ जाएगा। तो भगवान उधर भी साथ जाते हैं, ऐसा नहीं कि उधर नहीं जाते। क्या भगवान वहां नहीं जाते? कोई आदमी जेल में जाता है तो उसके साथ परमात्मा उसके जेल में नहीं जाते हैं क्या? उसके हृदय में बैठे हुए अंदर जाते हैं कि नहीं जाते? तो जो हमको कभी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में रहता है, इस दुनिया में जिन चीजों को हम अपना पहले मान के बैठे हैं वो तो वन वे हमारा ट्रैफिक है। वो लोग तो वो चीजें तो हमको जानती नहीं है। जानती है क्या वो चीजें जिसको हमने अपना मान के रखा है? भाई घर को हमने अपना माना है कि घर आपको जानता है, पहचानता है क्या? आप एक घर बदल के दूसरे में जाते हैं, घर कभी पूछता है आपको क्यों जा रहे हो? आप गाड़ी अपनी को अपना मानते हैं, कभी गाड़ी ने पीछे से बुलाया है कि भाई कहां जा रहे हो? मुझे ये जेवर है, ये बहुत अच्छे सारे आभूषण है, क्या ये सब आप अपने मानते हो? आपको कभी इन्होंने पूछा है क्या? जो भी भौतिक चीजें जिनको हमने अपना मानने का एक मान्यता बना रखी है वो हमको नहीं जानते। हमारा वो हमको जान आपको जानता है, कभी पूछा है उसने क्या? कभी चोई चूहा उठा के जाए अंगूठी तो फिर कोई अंगूठी चिल्लाती है चूहा ले जा रहा है देख लो बहन, कोई बोला है कभी? नहीं ना। तो ये हमारी एक तरफी मान्यता है कि ये सब चीजों को हम अपना मान रहे हैं, जबकि वो चीजें हमको जानती भी नहीं। और ये संसार में कहते हैं ये मेरा वो मेरा है, लेकिन वो भी हमको पहचानते नहीं है। असल में ये सत्य है कि वो हमको पहचानते नहीं। क्या वो आपको आपको आत्मा के नाते से पहचानते हैं क्या? जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाता है तब कोई भी सगा संबंधी उसको घर में 24 घंटे रखने को तैयार नहीं है। ये तो सबने देखा है कि नहीं देखा? और ये अच्छे सारे आभूषण जो प्रेम से लाके देते हैं परिवार वाले, शरीर से जब आत्मा निकलती है तो रोना बाद में आता है, पहले सोना याद आता है, सब उतारना शुरू करते हैं। देखा है कभी? रोना बाद में आता है, सोना पहले डोल याद करते हैं, सभी चीजें आस्ते आस्तर करके उतार लेते हैं। ये सच है कि झूठ है? तो क्या वो हमको जानते हैं पहचानते हैं क्या? ये संसार में जितना भी संबंधी पहचान कहां, वो शरीर को पहचानते हैं, लेकिन पता कब लगता है? जब शरीर से आत्मा निकलती है तब शरीर को कोई नहीं रखता है घर में। इसका अर्थ है कि कौन है जो सदा हमारे साथ रहता है और वो सबके हृदय में रहता है। तो असल में जो धर्म की परिभाषा है कि हम प्रेम करने के लिए पैदा हुए हैं क्योंकि ये हमारा धर्म है, और हमसे प्रेम नित्य शाश्वत सदा के लिए इटर्नली भगवान करता है, और क्योंकि भगवान सबके ही माता पिता सब कुछ भगवान है, तो भगवान से प्रेम करने से हम सारे संसार से प्रेम का व्यवहार करके अपने धर्म का पालन कर सकते। मिसिंग लिंक कहां है? मिसिंग लिंक यहां है कि भगवान पहले तो अपने को नहीं जानते हैं और फिर भगवान को नहीं पहचानते हैं, और फिर संसार के अंदर शरीर और शरीर के संबंधों के ऊपर सारा काम चलाते हैं। इसलिए हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहेगी दुनिया में, क्योंकि ये दोनों सदा रहने वाले, न दुनिया सदा रहने वाली है, न दुनिया की चीजें सदा रहने वाली है, न दुनिया में चलने वाले फिरने वाले शरीर सदा रहने वाले। जिससे हम बहुत बड़ी प्रेम और सेवा करते हैं, हमारा दादाजी था बड़े गोद में खेले प्रेम की, लेकिन एक समय के ऊपर तो उनको जाना पड़ गया, तो हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं हो गए? रोना हो गया, अब क्या करें, चले गए। तो हमारी जो प्रेम करने की प्रवृत्ति, सेवा करने की भावना है, वो अगर टेम्पररी किसी चीज में लगा के रखी तो आज नहीं तो कल फ्रस्ट्रेशन उसमें होना संभव है। और हम हैं स्वयं नित्य शाश्वत एटरनल, और हम चीजें टेम्पररियों को चाहेंगे तो फिर हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो सिद्धांत है कि भगवान हमसे प्रेम करता है, पहले तो ये समझना चाहिए। तो भगवान हमसे प्रेम करता है वो किससे प्रेम करता है? वो तो करता है आत्मा से प्रेम, क्योंकि आत्मा उसका अंश है। शरीर तो प्रकृति ने दिया है, शरीर प्रकृति की तरफ भागता है और आत्मा आत्मा शांति चाहती है, आनंद चाहती है, और शरीर मौज मनाना चाहता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम दो चीजों के बने हुए हैं, आप अच्छी तरह से देख लेना। ये पूरा शरीर है ये प्रकृति ने दिया है, और ये संसार प्रकृति का है। प्रकृति, ये संसार को प्रकृति कहते हैं, शरीर यहां से मिला है इसलिए इसमें सुख लेना चाहता है। और आत्मा भगवान का अंश है, और जब भगवान की तरफ जाता है तभी उसको सुख मिलता है। ये हमारे जीवन की एक रसाकशी चल रही है, खींचातानी चल रही है। शरीर संसार की तरफ खींचता है, आत्मा शांति की तरफ खींचता है। ये हमारे जीवन में एक रसाकशी है, एक खींचातानी लगी हुई है। कभी ऐसे लगता है आपको? एक खींचातानी है हमारे से, बहुत बड़ी खींचातानी है। सबके जीवन में खींचातानी लगी हुई है। ये दूसरा एक श्लोक है भगवत गीता का, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसिष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान सीना ठोक के कहते हैं कि आप सब मेरी संतान हो, अहम बीज प्रदा पिता, बीज देने वाला पिता मैं हूं, ये जीवात्मा मेरा अटूट अंश है। फिर क्या हो गया? बोले ये सनातन है, सदा रहने वाला है। इसको हो क्या गया? जीव भूत, भूत कहते हैं पांच, ये पांच तत्व का शरीर है, इसको कहते हैं भूत। भूत का मतलब फाइव एलिमेंट्स की बॉडी, पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि, ये जो पांच तत्व का शरीर है, सबके अंदर मसाला एक ही है। वो किसी किसी हिंदी के, उर्दू हिंदी के कवि ने कहा है, पांच तत्व का पुतला की नाम रखो या बंदा। पांच तत्व का सबका मसाला तो सबका एक ही है, और नाम रखा बंदा, इंसान आदमी। बाहर सूरत सुंदर देखे, कारीगर ने कारीगरी की ऊपर फेर दिया रंदा, ये चमड़ी का ऊपर अच्छा सा एक कवरिंग डाल दिया। बाहर सूरत सुंदर देखे, अंदर माल भर दिया गंदा। बाहर तो ये बड़ी अच्छी पैकिंग की है, लेकिन अंदर सब कचरा भरा है, सब कचरा भरा है। कहीं कुछ भी, कहीं भी देखो, आंख से क्या, कान से क्या, कचरा ही कचरा निकलता है। और फिर संत कहता है, बंदा तो बंदगी, बंदगी का मतलब भगवान की भक्ति करना, स्मरण करना, सेवा करना, ये बंदगी। नहीं तो गंदे का गंदा, नहीं तो फिर जैसा अंधा वैसा, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो जीवन में जिसने अपना संबंध भगवान से नहीं जोड़ा, वो तो जैसा बाहर वैसा अंदर, उसमें कोई अच्छाई नहीं आ पाई। सो बात ये कर रहे थे कि शरीर के लिए तो हमारे पास 24 घंटे सबको भगवान ने बराबर के दिए हैं, किसी के पास न कम है न ज्यादा है, न बड़े सेठ के पास ज्यादा है न गरीब के पास कम है। 8 घंटे आपको आराम करने के लिए दिए, खाओ पियो सो नहाओ धो, 8 घंटे आपको काम करने के लिए दिए है, अपने परिवार को पालो कमाओ नौकरी करो धंधा करो घर का सामान देखभाल करो, ये 8 घंटे में सब कुछ होना ना चाहिए। बाकी 8 घंटे आपके अपने लिए है, आपके अपने लिए मतलब आत्मचिंतन के लिए है। ये फार्मूला वैदिक भारतीय संस्कृति का ये फार्मूला है, 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे शरीर और शरीर से उत्पन्न परिवार के पालन पोषण के लिए। कहीं भी नौकरी करते हैं, दुकान धंधा चलाते हैं, तो टाइम 8 घंटे का है। बीच में आपको ब्रेक करनी है, लंच करनी है, ये तो उसी के अंदर आएगा। मैक्सिमम 1-2 घंटा कभी कोई लालच ज्यादा करे तो कर सकता है, लेकिन टाइम टेबल ऐसा दुनिया में बना हुआ है। आपका अपना टाइम कौन खा जाता है वो असल में आपके सुख शांति को छीनता है। आपका अपना पर्सनल टाइम है, कुछ अपने पर्सनल टाइम अपने का कभी विचार किया है? मेरे लिए कौन सा समय है, मेरा समय कहां? आपकी तो ये सब आप बैठी हैं देवियां, आपका तो सबसे बड़ी समस्या ये कि मेरा घर कहां, ये भी आपकी समस्या है। 20 साल तक तो बाप के घर को अपना घर समझा, फिर पति के घर को अपना समझ जाते, बेटे बड़े हो गया तो वो घर भी अपना नहीं, तो आपका कहाँ है घर? आपकी ये समस्या है, इसका क्या इलाज है? तो हमारा अपना टाइम कहाँ है? कुछ समय अपने लिए जो निकालता है वो बुद्धिमान है, और जो अपना भगवान से हमारा एक नित्य शाश्वत संबंध है। बात ये कर रहे थे, भगवान ने कहा कि आप सब मेरे अंश हैं, आप सनातन हैं, लेकिन आपको ये शरीर रूपी, ये शरीर किसका बना है? पांच भूतों का, तो लगा है भूत। जब किसी को भूत लगता है, भूत प्रेत समझते हैं ना, घोस्ट हंटेड, तो भूत जब किसी को लगता है ना, तो वो अपनी पहचान भूल जाता है, वो भूत वाली भाषा बोलता है, अपने को नहीं बोलता है, भूत की भाषा बोलता है। ऐसे हम आत्मा के नाते अपने आप को नहीं पहचान कराते, शरीर के नाते पहचान कराते हैं। भाई जब मेरा आज नाम है सम्मानो, आज मेरा किसी का नाम है गोपाल, लेकिन जन्म हुआ उससे पहले, जन्म नाम से पहले मेरा नाम क्या था पता नहीं, ये नाम तो किसी ने दिया है, तो मैं कौन हूं ये तो मुझे भी पता नहीं, आज तक पता नहीं है, मैंने कभी सोचा नहीं है मैं कौन हूं। ये इसलिए वेद ने पहला ही शब्द पूछ ला, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आपको ये मानव जैसा दुर्लभ शरीर मिला है, तो पहला ये प्रश्न पूछ लो अपने आप से, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं क्यों यहां, मेरी इच्छा के अनुसार मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। बच्चा जन्म लेता है, स्कूल जाना नहीं चाहता है, आप जबरदस्ती उसको ले जाकर जाते हैं, चाहे उसकी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है उसकी इच्छा? आत्मा के नाते वो तो अपने आप पहले से परिपूर्ण है, उसको सब कुछ आता है। हम शरीर के नाते उसके ऊपर कुछ ठोसना चाहते हैं। अंग्रेजी में एजुकेशन जो शब्द है, इसकी माना क्या है? टू ब्रिंग आउट। टू ब्रिंग आउट का मतलब उसके अंदर जो चीज है उसको बाहर निकालो। हम क्या करते हैं, बाहर से लाद के उसको बोरी की तरह भरते, तो वो एजुकेशन नहीं हुई, वो तो बोरी भरना हुआ, उसका दिमाग खराब करते दबा दबा के कुछ। और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर काम क्रोध लोभ भी है, उसके अंदर प्रेम भी है। अब जैसा संग मिलेगा वो चीज वहां से बाहर आएगी। अब कि आज की एजुकेशन में उनको संग क्या मिल रहा है, पैसा कहां है, कहां से लाना है, न कोई भाई है, न कोई चाचा है, न कोई मामा है, पैसा कहां है, सब कुछ रुपया है, कोई नहीं रिश्तेदार है। एक मारवाड़ी बेटे ने अपने बाप से पूछा कि पिताजी अपने धंधे की सीक्रेट क्या है, इतना सारा हमारा धंधा चल रहा है, बोला सीक्रेट क्या है? बोला बेटा छत के ऊपर चढ़ जाओ। बच्चा छत पे चढ़ गया, तीन मेले पे। बोला कूदो नीचे। बोला पिताजी गिरूंगा, हाथ टूट जाएगा। बोला मैं हूं ना, तेरे को खींच कर लूंगा। कूदा नीचे से, बाबा तो पीछे हट गया, नीचे गिरा, दो हड्डी टूटी, एम्बुलेंस मंगाई, अस्पताल ले गया, इलाज कराया, पैसा 50,000 खर्च किया। बेटा होश में आया तो पूछते पिताजी आपने कहा था खींच कर लूंगा ना? बोला बेटा तुमने प्रश्न क्या पूछा था? बोला हमारे धंधे की सीक्रेट क्या है? बोला यही है, अपने बाप की बात के ऊपर विश्वास नहीं करना, ये सीक्रेट है हमारे धंधे की, कि अपने बाप की बात के ऊपर भी विश्वास नहीं करना। ये है आजकल की एजुकेशन, किसी के ऊपर विश्वास नहीं। आप अपने अंदर में देख लो, परिवार में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि ये एजुकेशन का असर है। और पहले एजुकेशन में बच्चा 5 साल का होता था, बाप के दुकान पे जाने शुरू कर देता था, बाप के काम में हाथ बटाना शुरू करता। भगवान कृष्ण की जीवनी देखते हैं, 5 साल का हुआ तो गैया चराने गया, बाबा गैया गोपाल, हाँ गोपाल है, नंद बाबा की गाय है, तो गैया चराना 5 साल से शुरू हो गया। पहले लड़की 5 साल की होती थी, माँ को सब्जी छीलने में काम कराती थी, घर साफ करने में काम कराती। अब कोई लड़की घर में ये काम करती है? आप बताओ, कोई नहीं करती है। ये सच है कि झूठ है? आप बताओ करती है कोई? नहीं करती है। जो एजुकेशन है वो कभी नहीं सिखाती है कि आप अपने परिवार को सुख देना, नहीं, आपको सुख कहां से मिलेगा? वो कहेगा पैसा दो, वो सब कुछ मांगेगा, लेकिन आपकी सेवा करके आपकी सहायता नहीं करेगा। ये मॉडर्न एजुकेशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। इसलिए कोई परिवार ज्वाइंट नहीं है, कोई परिवार साथ में नहीं। और इसका सबसे बड़ा किसके ऊपर पड़ रहा है? दुष्प्रभाव बच्चों के ऊपर। उनको दादा नहीं मिल रहा है, ना चाचा नहीं मिल रहा है, बस वही मम्मी और पापा, और सुबह लड़ाई और शाम को प्रार्थना, भी परेशान, वो किसी की नहीं सुनते। ये सब घरों का हाल है। ये अच्छी तरह से इसको देखें तो ये बहुत बड़ा एक में ताजा में एक फ्रेंच एम्बेसडर का इंटरव्यू पढ़ रहा था कि भारत ने अपने भारतीय होने को ही भुला दिया। पहले भारत अपना क्रिएटिव हुआ करता था, स्पिरिचुअली दुनिया सारी वहां सीखने जाया करती थी। ब्रिटिश रूल के बाद भारतीय अब नकल करना सीखे, अपने उनकी जो ओरिजिनल, उनकी अपनी ओरिजिनल जो इनोवेटिव थे, जो क्रिएटिव थे, वो खत्म हो गया, अब सिर्फ नकल कर रहे हैं। ये फ्रेंच एम्बेसडर का इंटरव्यू, कोई आप किसी को जिसको कहा जाए कि अपनी संस्कृति से बहुत स्नेह है तो मैं, मेरे पास पड़ा होगा, मैं देता हूं उसको, आप सुन के देखे, एक एम्बेसडर है जो कहता है मैंने भारत के अंदर आपका अपना इतना बड़ा अच्छा कवि पोएट कविदा कालिदास हुआ, किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? शेक्सपियर तो पढ़ाया जा रहा है, गोएटे पढ़ाया जा रहा है, कालिदास की ट्रांसलेशन कहते हैं हम पढ़ते हैं तो भी इन सबसे वो महान लग रहा है, लेकिन आपके यहां क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आपके बच्चों को आपके अपने हीरो नहीं पढ़ाए जा रहे हैं जिनका उनको गौरव होना चाहिए। आप अपने अंदर देखे, आर वी प्राउड ऑफ बीइंग भारतीय? क्या हमको ये प्राइड है क्या? नहीं, क्योंकि हमको एजुकेशन ऐसी दी गई है। वो कह रहा है कि आप दुनिया सारी का लीडर, और ये नहीं होता तो भारत कभी कहीं बाहर गया क्या? लोग भारत में आए, हजारों सालों से लोग के पास कुछ नहीं था, भारत में लेने के लिए आते थे, ब्रिटिश तक भी वहां आया, और जब से वहां से गया है तब तक उसका जिंदगी दुनिया में अभी कोई वो वैभव नहीं रहेगा जब तक वो भारत में राज करता था। तो इसका मतलब जो हमारे पास रिचनेस थी वो हमने भुला दी, और हमारी रिचनेस ही आध्यात्मिकता थी, हमारी सेटिस्फेक्शन हमारी रिचनेस थी। कोई बाहर, कोई फॉरेनर इंडिया में घूमने गया तो पहले देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा नहीं है भाई, रोड ठीक नहीं है, प्लानिंग ठीक नहीं है, लेकिन गाड़ी कहीं खराब की तो 10 आदमियों ने आके धक्का दिया, और कुछ आदमी पानी लेके आए, कुछ आदमी घर में ले गए, भोजन कराया, तो उसने बोला ये तो कभी हमारे मुल्क में हो नहीं सकता है। तो उसने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर अभी तक अच्छा है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है भारत का किसी आदमी की सहायता करने का, वो अभी तक ठीक ठाक है। अभी भी गांव में जाओ तो आपको कोई खाना भी खिलाएगा। पहले कहते हैं भारत में कभी कोई भोजन बिकता नहीं था, अतिथि देवो भव, जहां संस्कृति में कहा गया है कि मेहमान घर में आए तो प्रेम से उसको बिठा के खिलाओ, तो वहां खाना बिकता नहीं था। ये सब पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी वैल्यूज को चेंज कर दिए, तो एक जो प्रेम का वातावरण था वो कमर्शियल हो गया, सारा परिवार कमर्शियल हो गए, तो जो धर्म का असली मूल प्रेम था वो अब बहुत विकृत होके, परवर्टेड होके एक्सप्लाइटेशन हो गया। तो धर्म असल में प्रेम है, भगवान से प्रेम करेंगे तो अपने आप परिवार से प्रेम हो जाएगा। अब हम भगवान के बच्चे, अगर भगवान से प्रेम नहीं करते तो हमारे बच्चे हमसे क्यों करेंगे? हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान से प्रेम नहीं करते तो हमारे बच्चे हमसे क्यों करेंगे? तो बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है, अगर हमारा भगवान से प्रेम चालू हो जाए तो हमारी दुनिया हमसे अपने आप प्रेम करने लग जाएगी, फिर कोई हमारा शत्रु नहीं रह जाएगा। बहुत सिंपल फार्मूला है, और ये सारे धर्मों का मूल उद्देश्य है कि एजुकेशन, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकाले, और हमारे अंदर है असल में कूट कूट के प्रेम भरा हुआ। बच्चे को देखो तो वो मां की तरफ कैसे लालायित होके जाता है प्रेम के कारण, वो प्रेम है तब तो वहां जाता है, नहीं तो क्यों नहीं, क्यों जाएगा? प्रेम उसको खींच के ले जाता है, और सब कुछ करने के लिए आदमी तैयार होता है दुनिया के अंदर। देश के लिए प्रेम है, परिवार के लिए प्रेम है, भाई जो जो नेशनलिस्ट होते हैं अपनी जान दे देते हैं अपने देश के लिए प्रेम के कारण, और किसके कारण? तो ये जो असल में हमारे अंदर जो हमारी प्रतिभा है, इसको बाहर निकालने के लिए अभी कोई ही साधन नहीं है। अध्यात्मिक का हमको सुखी करने के लिए, हाँ अपने जीवन में कैसे हम हैप्पी हो जाएं, हैप्पीनेस हमारे जीवन में कैसे आए, वो आएगी जब प्रेम का वातावरण, हमारा संबंध भगवान से प्रेम का होगा और उस संबंध के नाते ही सारा संसार भगवान है, भगवान का है, तो सबके प्रति हमारा सद्भावना का, मैत्री का भाव हो, तो समझ लीजिए कि हम जीवन में सफल हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। तो भगवान तो कहता है मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके दिल में बैठा हूं, मैं आपका अपना हूं, और मैंने कभी आपका साथ छोड़ा नहीं है। जो बात हम कर रहे थे, भगवान कहते हैं आप जीव मेरा अंश है, इसको ये शरीर रूपी पांच तत्वों की पहचान के कारण उसने अपने आप को भुला दिया, मुझे भी भुला दिया, सब कुछ शरीर को समझ के बैठा है, जो इसके साथ रहने वाला है नहीं, जो चीजें हमारे साथ रहने वाली नहीं है उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी हाथ में आएंगे नहीं, और जो सदा हमारे साथ रहने वाला है उसको हम भूल रहे हैं, जो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। ये इक्वेशन यहां गलत हो गई। होना क्या चाहिए? भगवान से प्रेम होना चाहिए, संसार से व्यवहार होना चाहिए। संसार से व्यवहार का मतलब ग्राहक से ग्राहक का व्यवहार, दुकानदार से दुकानदार का व्यवहार, कस्टमर से कस्टमर का व्यवहार, भाई से भाई का, पिता से पिता सा, ये सब व्यवहार है, मर्यादाएं, वो होनी चाहिए। प्रेम होना चाहिए भगवान से। हमने क्या कर दिया? प्रेम कर दिया संसार से, जो जानता ही नहीं है प्रेम होता क्या है, और व्यवहार कर दिया भगवान के, कभी संडे को, कभी मंडे को, कभी एक दिन जाते हैं, कभी मंदिर में, कभी कथा करते, कोई एक आधा दिन चुन लेते हैं, व्यवहार हो गया भगवान से और प्यार हो गया संसार से, ये उल्टा हो गया, इक्वेशन ही खराब हो गई। एक बुखार आ गया किसी को, टेम्परेचर था, फीवर था, तो डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, तो रास्ते में चक्कर आया, गिर पड़ा, तो पांव में मोच आ गई, तो डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब बुखार तो तीन दिन से है, आते हुए गिर पड़ा, पांव में मोच हो गई। डॉक्टर ने कहा ये दवाई है तुम्हारे को, ये खाना पेट में तुम्हारी बुखार के लिए, और ये मोच के ऊपर मालिश करना। तो वो जाते जाते वो लेबल वो गिर गए और दवाई समझ में आई नहीं, घर जब गया तो जो पेट में खाने वाली थी वो मालिश किया और जो मालिश वाली थी वो खाया, न बुखार गया न दर्द गया। तीन दिन के बाद डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर साहब इतना सारा खर्चा किया, दवाई खाई, न दर्द गया न बुखार गया। बोला क्या किया, कौन सी खाई? बोला ये खाया और ये पिया। बोला उल्टा किया तुमने, जो लगानी थी वो खाई, जो खानी थी वो लगाई। तो जो वहां प्रेम करना था वहां व्यवहार कर रहे हैं, जो जहां व्यवहार करना था वहां प्रेम कर रहे हैं, न तो बुखार जा रहा है न दर्द जा रहा है। ये संसार में हमारा फार्मूला ऐसा हो गया कि जो जो अब जो प्रेम करता है क्या नहीं देता है, भगवान कितना हमसे प्रेम करता है। सबसे महंगी चीज इस दुनिया में सांस लेने के लिए हवा, जो एक मिनट न मिले तो प्राण निकल जाएंगे, ये मुफ्त की सबके लिए भगवान ने उपलब्ध करके दी है कि नहीं? इसके लिए किसी को कोई खर्चा देना पड़ रहा है? कोई खर्चा नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में सबके लिए हवा का उपलब्ध कर दिया। हम ही उसको बिगाड़ के पॉल्यूट करके खराब करते हैं, प्रदूषण करते हैं, लेकिन वो कितनी ठंडी हवा वो धीर समीर मुफ्त में दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हमसे प्रेम करता है तब दे रहा है। ये बिजली का बिल नहीं दोगे तो एक महीने के बाद सरकार काट देती है, गवर्नमेंट काटती है कि नहीं, बिजली नहीं दोगे बिल तो। ये सूर्य कब से उसने आपके लिए चमका दिया है, कभी इस एक गोले का बिल मांगा है किसी से आज तक? मुफ्त में सबको उठाता है, चलाता है, प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये किसी के सरकार ने लगाया है कि नहीं लगाया है? तो दे रहा है क्योंकि हमसे प्रेम करता है। ये इतना सारा समुद्र का पानी है कोई पी सकता है? नहीं पी सकता है। लेकिन इसी पानी को मीठा करने के लिए कितना बड़ा उसने प्रबंध किया है, सूरज से पानी यही समुद्र का ऊपर जाके बादल बन के मीठा नीचे नदियों में बरसता है। कितनी बड़ी ऑपरेशन हो रही है, कोई पैसे का खर्चा, बिजली का खर्चा है नहीं, पाइप है, कुछ भी नहीं है, कितनी बड़ी ऑपरेशन हो रही है कि आपको खारा पानी मीठा करके पहुंचाया जा रहा है। क्यों? भगवान हमसे प्रेम करता है। आप तो खाना, पहले तो धरती कितनी बड़ी कृपा करके माता ये है जो हमको पालन कर रही है, एक दाना डालो तीन महीने में हजारों दाने, एक 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 गेहूं हजार दाना हो जाता है, एक राइस हजार दाना हो जाता है तीन महीने में। इतना रिटर्न कोई देता है दुनिया में? किसी बिजनेस में कोई इतना रिटर्न देखा है जितना धरती देती है? ये माँ है, कितना रिटर्न देती है, वहीं से अनाज आता है, और कहीं से कोई प्लास्टिक का अभी बना रहे हैं लोग, उससे लोग डर रहे हैं खाने से, लेकिन ये कब से धरती दे रही है, कभी कमी किया उसने? आप तो पका के मुंह में डाल सकते हो, लेकिन गले से नीचे उतरने के बाद अंदर कौन उस सारे को मिक्स करता है, उसमें से पौष्टिक पदार्थ निकालता है, उसमें से कचरा अलग करता है, वो अंदर सफाई कौन करता है? आपके किचन की सफाई के लिए भी एक दो आदमी रखने पड़ते हैं, आपसे कोई होती नहीं है, और अंदर कौन सफाई कर रहा है? भगवान भगवत गीता में कहता है मैं कर रहा हूं सफाई, अहम वैश्वान रो भूतवा प्राणी नाम देह आश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम यनम, मैं बैठा अंदर में आपके भोजन को पका रहा हूं, रस निकाल रहा हूं, आपकी सारा देखभाल कर रहा हूं। ये दिल हमारा धड़कता है कौन? हम सो जाते हैं, कौन अंदर में दिल चला रहे? ये जाते हैं डॉक्टर के पास, वो पेसमेकर लगाता है, पैसा लेता है, और भगवान ने कब से मुफ्त का चला रहा है? भगवान कितनी कृपा की है, एक ऑक्सीजन आईसीयू वाला लगा देता है, आईसीयू वाला जाए अस्पताल में तो एक घंटे के 1200 रुपये लेता है, और ऐसा भगवान अगर बिल भेजा होता तो एक भी सेठ नहीं रहता दुनिया में, सारे सारों का देवाला निकल जाता, लेकिन ये सब मुफ्त का है कि नहीं? तो ये सब रिमाइंड करना चाहिए कि कितनी कृपा भगवान ने हमारे ऊपर की है कि सब चीजें जो कॉस्टली हैं वो फ्री की दे दी, और उसके प्रति मांगता क्या है? कुछ भी नहीं। भाई मां बाप बच्चों से क्या मांगते हैं? छोटा आपका 5 साल का बच्चा हो, आपकी थाली में भोजन पड़ा हो और उसमें से एक टुकड़ा उठा के आपके मुख में डाले वो बच्चा, तो आप कितने खुश होते हो? मेरा बच्चा मुझे खिला रहा है, बुला के बोलते देखो देखो मेरे को खिला रहा है। वो कहीं से लाया? लाए आप, पकाया आपने, थाली आपकी, वो उठा के आप में मुंह में डालता है, आपको कितनी खुशी होती है? ऐसे सब कुछ दिया भगवान का है, अगर हम उसकी ओर हाथ उठा के उसको दिखाते हैं कि ये तुम्हारे को दे रहे, वो खुश हो जाता है, देखो मेरे बच्चा मेरे को खिला रहा है। अब उसको कोई खाने की जरूरत है तो माल तो उसी का है, तो बाप का माल है, बच्चा सिर्फ देता है, इसमें उसके बाप को परिप्रसन्नता होती है। तो हम क्या भगवान, वो हमसे इतना प्रेम करता है, हमसे मांगता क्या है कि वापस लौट के प्रेम कर लो। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बेटा आके मेरे को प्रणाम नमस्कार करता है तो माँ बाप के दिल इतना फूल जाता है, मेरा बेटा देखो आज्ञाकारी है, सिर्फ नीचे झुकता है। तो आप तो माताएं हैं, आप देखो बच्चा कभी झुकता है तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा दिन हृदय में से आशीर्वाद निकलता है कि भी सुखी रहो, ये अंदर से अपने आप निकलता है। लेकिन अब झुकना ही बच्चों ने छोड़ दिया, क्योंकि आज की पढ़ाई में कोई सिखा नहीं रहा है कि माता पिता की सेवा करना, कहीं हो ना रहा, ये कल्चर है खत्म हुआ है कि नहीं? ये कल्चर, ये बच्चे जो माता पिता की सेवा करते थे, चरण दबाते थे, वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हो गया। तब से ये मशीनें आई, 1 लाख रुपए की कुर्सी लाओ और पांव दबाएगी, अब बच्चे दबाते नहीं है तो अब कुर्सियां पांव दबा रही है, ये बड़े आश्चर्य लगता है। नहीं तो ये काम तो नेचुरल है, अभी तो ऐसे कहा कि सर दुख रहा है दबा रहो, बहू बोला सर की नहीं, ये गले में दर्द। कमिश्नर के घर में गया, मैंने बोला आपकी बेटी नहीं दिख रही, बोला ट्यूशन पे गई, मैंने बोला उसने पास तो पहले कर लिया, वो ग्रेजुएट है, ट्यूशन क्या है? बोला वो झाड़ू पोछे करने की ट्यूशन लेने गई। बोला मैंने क्यों? बोला भी उसकी शादी होने वाली है, कम से कम उसको पता तो होना चाहिए होता कैसे, अब ये ट्यूशन ले रही थी बच्ची की, अब ये झाड़ू पोछे की कोई ट्यूशन लेना होना है, वो ट्यूशन लेने गई थी। मैं सच्ची कहानी बता रहा हूं आपको कि जी काम क्यों नहीं बच्चे बचपन से करते, वो तो पुराने जमाने में ये नौकरी करना तो हमारा काम ही नहीं था, नहीं ये तो अंग्रेज ने हमको नौकरी की बीमारी दे दी, नहीं तो पहले ये हमारे पास बीमा 1850 में अर्जुन अंग्रेज ने सर्वे किया था भारत का, कोई अनपढ़ नहीं था, 100% लिटरेसी रेट था साउथ इंडिया का, और नॉर्थ इंडिया में 97% एजुकेशन थी, और 16 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, और फ्री में गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे, गुरुजन पढ़ाया करते थे, कोई भिखारी नहीं था, कोई बेरोजगार नहीं था, ये इंडिया की स्थिति थी जब ब्रिटिश आया था, और उन्होंने आर्टिफिशियल आकार करके सबको भिखारी बनाया, सबको जो है वो नौकर बनाया। उन्होंने क्या किया पहला काम, मेकाले ने कहा कि जब तक इनकी एजुकेशन की पद्धति को बदलने खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये हमारी नौकरी नहीं करेंगे, और उन्होंने पहले एजुकेशन को जड़ से उखाड़ा। ये मेघालय का लेटर अभी तक ऑफिशियल पड़ा है, उसने अपने बाप को लिखा था कि भारत की एजुकेशन को हमने ऐसे जड़ से निकाला है जैसे किसान खेत में हल चलाने से पहले अपने खेत को साफ करता है, अब हम कॉन्वेंट का बीज बोने जा रहे हैं, अब ये अंग्रेजी पढ़ेंगे, देखने में भले भारतीय हों लेकिन हमारे पांव के तलवे चाटते रहेंगे, ये हमारे नौकर ही रहेंगे। ये उनकी, ये उनका लिखा हुआ चिट्ठी अभी तक रिकॉर्ड में पड़ा है, और ये सत्य है। आज हम अपनी सब चीजों को भूल चुके, और जिस चिपद्धति को मेकाले ने भारत से निकाली दे के खत्म कर दिया, वो श्रील प्रभुपाद ने मिस्कान की स्थापना करने के बाद 67 में पहला गुरुकुल अमेरिका में खोला। कि ये पद्धति एजुकेशन की जब होगी तब बच्चे माता पिता के, समाज के, देश के सेवा के काम आएंगे और अच्छा एक अच्छा जिसको कहा जाए कि पीसफुल पूरे दुनिया का वातावरण बनेगा। एक जगह तो श्री प्रभुपाद ने भागवत के इंट्रोडक्शन में लिखा है, पहले स्कंद में, तब तो इस्कान की अभी स्थापना भी नहीं हुई थी वृंदावन में, कि दुनिया भर में जो अशांति है, दुनिया भर में जो इतने सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसकी सारी जवाबदारी भारत के ऊपर है, भारत उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अरे ये कैसे कह रहे हैं महाराज, भारत क्यों रेस्पॉन्सिबल है? तो प्रभुपाद ने नीचे लिखा, क्योंकि भारत ने प्रेम और मैत्री का संदेश दुनिया को नहीं दिया जो इसका धरोहर था। ये जो भागवत गीता और भागवत का संदेश है, ये लोगों के अंदर आत्मा के विज्ञान से प्रेम का जो शिक्षा देगा, इसको दुनिया को नहीं पहुंचाया है, इसलिए दुनिया में दुख है। प्रभुपाद ने तब ये लिखा था, तब तो उनकी उम्र 68 साल थी। देखा कि ये काम कोई नहीं कर रहा है, तो स्वयं 69 साल में, और 69 पूरे हो रहे थे, 70 शुरू, 70 तो उनका पानी के जहाज में हुआ जन्माष्टमी के दूसरे दिन। तो ये काम स्वयं करने के लिए उसी भागवत को, उसी गीता को भारत से लेकर और अमेरिका में जाकर एक 1.25 महीने के जहाज के, पानी के जहाज, वो भी कार्गो शिप में जाकर वहां उतरे हैं। तो पहले देख के कहते हैं, ये लोग कहते हैं अमेरिकन सुखी है, मुझे तो ये रजोगुण और तमोगुण में लोभी और लालची और आलसी भागते हुए दिख रहे हैं, इनको शांति तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने पहले देखा, उतरते ही देखा कि ये तो रजोगुण में भागा दौड़ी कर रहे हैं, तमोगुण में नशे में पड़े हुए हैं। उस वक्त उनका सारा नौजवान और 60s की अमेरिका का नौजवान हिप्पी बना था, वो कह रहा था मेरे बाप के घर में धन की कोई गिनती नहीं है, लेकिन सुख नहीं, शांति नहीं है, रोज बाप माँ बाप लड़ते हैं, और बेटा अपने सामने देखता है कि बाप 3 शादियां करता है, माँ 2 शादियां करती है, वो पता नहीं लगता है कि मेरा माम कौन है और बाप कौन है। ये तो आंखों से आज भी दुनिया का हाल है, आज दुनिया का ये हाल है। किसी कोई हमारे पास मिलने आता है तो हमको कोई जाते हैं बाहर के देश में, तो उसके साथ बेटा आता है, उससे पूछने में हमें संकोच होता है कि ये तुम्हारा बेटा है, पूछे कि नहीं पूछे। वो कभी कभी कहते हैं, नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का बेटा है। तो तू के हस्बैंड की लगती है पता नहीं, तो ये पहली बार आया, मेरा थोड़ी है ये हमको संकोच है, लेकिन उनको इस बात की परवाह ही नहीं। ऐसी स्थिति अभी समाज की है। सिंगल पेरेंट के चिल्ड्रन इतने दुनिया में सफर कर रहे हैं, सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन। मैं रशिया में था, मैं हर 5वीं 6वीं स्त्री को देखा, सिंगल पेरेंट की माँ है, वो पिताजी है नहीं, वो माँ बेचारे कहां से पालेगी, कैसे करेगी। ये स्थिति है, पूरी दुनिया की स्थिति ऐसी हो गई है। ये तो कल्चर सिर्फ भारत में संगठित था, जो बिगड़ गया उसको वापस कैसे लाया जाए, ये बात ये कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके ये कार्य क्यों शुरू किया, बोला क्योंकि भारतीय ब्रिटिश शासन के बाद हर चीज बाहर की बनी हुई को ही अच्छी मानते हैं, अपने देश की किसी चीज में उनका विश्वास नहीं रह गया। तो अब मैं साधु भी अमेरिकन बना के ले जाऊंगा, तभी नहीं कि आंख खुलेगी कि अरे भाई ये तो अभी अमेरिकन साधु है, अभी तो एक्सपर्ट इंपोर्टेड है ना। और वही एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब हो गया कि 66 में उन्होंने वहां 65 में पहुंचे और 66 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और 67 में पहली बार वापस आए इंडिया में। लेकिन 70 तक वो एक बहुत बड़ा समूह यूरोप और अमेरिका से धोती पहने हुए भक्तों का, साड़ी पहनी हुई माताओं को ले आए, और जब इंडिया की महानगरों में कीर्तन किया तो पूरा भारत एकदम जाग गया कि अरे ये क्या हो रहा है, ये हरे कृष्ण बोल रहे हैं, ये तो अंग्रेज हैं, ये तो हमारे पहले यहां शासन थे, ये टाई पहनते थे और कोट पहनते थे, और अब हम टाई कोट पहन के बैठे हैं और ये धोती पहन रहे हैं, ये क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया, पैराडाइम शिफ्ट हो गया। तो उनका दिमाग हिलने लगा और उसका ऐसा परिणाम हुआ कि भारत में जागृति जागृति आ गई। आज आज हमारे पास नहीं तो भी हजारों की संख्या में पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, अच्छे अच्छे मेडिकल ग्रेजुएट क्या, IIT ग्रेजुएट क्या, हजारों की संख्या में भारत में है जो अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, अपने शास्त्र को जानते हैं। जीवन में सक्सेस तो इस एजुकेशन सिखाती है, लेकिन हैप्पीनेस कैसे होना चाहिए ये हम सिखा रहे हैं उनको, कि सक्सेस के साथ सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगी, सुख कहां से मिलेगा, ये एजुकेशन नहीं दे रही है। तो ये अब इसकी आवश्यकता है कि जो हमारे संस्कार थे जो चले गए हैं उनको वापस कैसे लाया जाए। बहुत दूर चले गए हैं लेकिन फिर भी प्रयास किया जाए, 10% भी लोग दुनिया के इस बात को समझे तो दुनिया पीसफुल हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है असल में। तो आत्मा के विज्ञान को जानने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, और हम आप सब देवियों को प्रार्थना करते हैं कि अगर आप अपने घर में स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर क्रिएट करेंगी, आध्यात्मिक वातावरण बनाएंगी, यहां जैसे मंदिर इतना बड़ा बनाया हुआ है इस परिवार ने, पूरा देखो आधा एक कमरे का पूरा दे दिया है मंदिर के लिए, चलो तो यहां भगवान ने इनको दिया है बड़ा स्थान तो बड़ा है, आपके पास छोटा है तो छोटा दीजिए, लेकिन घर में आपके घर में सुबह अगरबत्ती जलेगी, दीप जलेगा, घंटी बजेगी, तो छोटे बच्चों को संस्कार मिलेंगे, वो देखेंगे हमारे घर के अंदर ये कुछ पूजा पाठ हो रही है। स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा, बाहर उनको ये कोई नहीं सिखाएगा। अब तो धर्म की रक्षा के किले की आखिरी दीवार आप देवियां हैं, अगर आपने घर के अंदर कुछ संस्कार बचाए तो आने वाली पीढ़ी के बच्चों को कुछ संस्कार मिलेंगे, नहीं तो बाहर से कहीं से कुछ मिलना अब संभव नहीं। और आप अगर ये महसूस कर रही हैं, आप अगर ये रियलाइज कर रही हैं, अगर आपका ये विचार है कि जो इस वक्त जिस तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा अगर आपको अनुभव हो रहा है, तो आपको ये जवाबदारी निभाने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे बड़े हो गए हों, लेकिन आपके बच्चों के लिए कुछ संस्कार देने की आवश्यकता, ये जवाबदारी आपको निभानी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हैं कि इसकी जरूरत है, और हम कहीं स्ट्रेट जाने के बजाय टेंजेंटली चले गए हैं, थोड़े से टेढ़े चले गए हैं, हमने अपना लक्ष्य भुला दिया है, अगर आपको ऐसे महसूस होता है तो ये जवाबदारी उठाने का विचार करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? कुड़ो दबा देखा रहे सपने तांगे सब नहीं बोले। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार का और आप सबका। हमारा संदेश सिर्फ ये है कि आपके घरों में थोड़ा सा आध्यात्मिक वातावरण बना के रखें कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संस्कार बचे रहे, नहीं तो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। वेस्ट परेशान है, जिसको हम अपना रहे हैं उससे वो परेशान है, नहीं तो हैप्पी क्यों बनते वो? और वो जब हैप्पी बने तब प्रभुपाद ने उनको ये प्रेम का जैसे संदेश दिया, दे एक्सेप्टेड, बोला यही तो मिसिंग था हमारे साथ, बाकी सब सुविधाएं थी, ये एक चीज मिसिंग थी। और हम क्या है, जो चीज असली है उसको छोड़ के हम उनके पीछे भाग रहे हैं, जो परेशान होके वापस हमारी ओर लौट रहे हैं। तो ये नेचुरल एक सर्किल है ऐसा, वो हमारी तरफ आ रहे हैं और हम उधर जा रहे हैं। मैं ऐसे अमेरिकन जानता हूं, ऐसे यूरोपियन जानता हूं जो वृंदावन कहते हैं हमको नेशनलिटी मिले हम यहां रह जाएं, वो इसके लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारे अपने बच्चे कहते हैं हम अमेरिका जाएं, हमको अच्छा लगता है। बिल्कुल उल्टा दिख रहा है आंखों के सामने, ये हम देख रहे हैं, वो वृंदावन में रहने में उनको सुख मिलता है, उनको वहां आनंद आ रहा है, वो सब दुख दुनिया का सुख देख के आया, अब उनको वो सुख चाहिए, और हमारे कहते हैं उधर जाके हम सुख लेंगे, बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। नहीं, बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने संस्कारों को साथ ले जाना चाहिए, संस्कारों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी कथा याद आ गई, एक बंदर रहता था पेड़ के ऊपर समुद्र के किनारे, उसकी दोस्ती मगरमच्छ से हो गई। तो बंदर रोज अच्छे अच्छे फल मगरमच्छ को भी खिलाता था, मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को जाके बता दिया कि मेरा मित्र बंदर बड़ा अच्छा है, मेरे को फल खिलाता है। बोला खुद भी फल खाता है? बोला हाँ। बोला उसको बुलाओ यहां हमारे घर में, वो इतने फल खाते होंगे तो उसका दिल कितना अच्छा टेस्टी होगा, आप लेके आओ उसको, हम उसके जल दिल का जूस बना के पी लेंगे, उसको मार के खा जाएंगे। मगरमच्छ ने जाके कहा, बंदर तुम्हारे हमको बहुत खिलाया, तुम हमारे साथ चलो, हमारी पत्नी तुम्हारे लिए दावत करती है, तुम्हारे को आज इन्विटेशन भेजा है, हमारे वहां बहुत बड़ा तुम्हारे लिए प्रबंध किया है खाने का, पर समुद्र में मैं कैसे, बोला मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। बंदर बैठ गया, आधे समुद्र में आया, पूछा, अरे भाई क्या खिलाओगे तुम्हारे पास मेरे खिलाने के लिए पानी में क्या होगा? बोला, खिलाना नहीं, मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को असल में निकाल के जूस बना के पीना चाहती। अरे बोला, मित्र तुमने गलती कर दी, मुझे पहले बोला होता ना, दिल तो मैं पेड़ के ऊपर छोड़ के आ गया, अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे से लड़ाई करेगी, चलो 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 जल्दी करो, दिल लेके चले तब पत्नी खुश होगी। वापस आया किनारे पे, बंदर उद के उठ चढ़ गया ऊपर कूद के पेड़ पे, अब मगर भाई आओ भैया दिल लेके, बोला अब मैं पागल थोड़ी हूं आऊंगा, अब तुम दे जाके मुझे मारना ही चाह रहे हो ना, तो हम कहीं भी दुनिया में जाएं बंदर की तरह दिल अपना भारत में रख के आए कि हमारे संस्कृति हमारे संस्कार वही रहेंगे, और कहीं भी घूम फिर के आएंगे दिल साथ लेके दूसरे, नहीं तो सब लोग जो है ना वो दिल चीर फाड़ के खाने वाले हैं, यहाँ कोई दिल देने वाला नहीं है, यहाँ तो सभी चीर फाड़ने वाले, कि हमारा प्रेम जो है वो तो उधर ही रख के आए हैं, वो हमारे अपनी संस्कृति से हमारा प्रेम है, हमारे अपने खान पीना स्वभाव जो हमारा है वो ही रहेगा, बाकी बाहर कहीं भी जाओ घूमो फिरो ठीक है, लेकिन प्रेम अपना पक्का भगवान के साथ जोड़ के रखोगे तो जीवन में सुखी रहोगे, क्योंकि हम हमसे प्रेम करते हैं और उनसे प्रेम करना ही धर्म है। धन्यवाद।